आप सुन रहे हैं उपन्यास मैला आंचल, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु और इसे स्वर दिया है आपके अपने दीपक यादव ने। बालदेव जी रामकिशुन आश्रम बहुत दिनों बाद आए हैं। एकदम बदल गया है आश्रम, लोग भी बदल गए हैं, थोड़ा चाल चलन भी बिगड़ गया है आश्रम का। अब तो लोग मछली और अंडा भी चौका ही में बैठकर खाते हैं। अमीन बाबू सेक्रेटरी हुए हैं, कहते हैं मछली मांस आश्रम में ना तो बनाया धोया जाता है और ना चूल्हे पर पकता ही है, लोग शहर से पका पकाया ले आते हैं, खाते हैं, इसमें हर्ज ही क्या है?
हर्ज क्या है?
बालदेव जी हक्का बक्का होकर अमीन बाबू का मुंह देखते हैं।
लेकिन पहले तो आश्रम के हाथा में भी नहीं आता था।
ये जो नया रसोई घर बना है वो आश्रम की जमीन में नहीं, कुबेर शाह की जमीन में है। अब तो आप जगह जमीन वाले आदमी हो गए, खाता खतियान नक्शा पर्चा देखना तो जरूर सीख गए होंगे। जाइए, जाकर कचहरी में नकल निकास करवा कर देख लीजिए, समझे? फारबिसगंज के नफतुरिया नेता छोटन बाबू कहते हैं। बालदेव जी कटमटाकर उनकी ओर देखते हैं। छोटन फारबिसगंज का ये लुच्चा लौंडा हर बात में पुछ-पुछ करता है। अमीन बाबू के साथ दिन रात रहता है ना, इसीलिए मुहजूर भी हो गया है, झूठा तो एक नंबर का। फारबिसगंज का नाम फरेबगंज करेगा ये, इसमें कोई संदेह नहीं।
छोटन बाबू, खाता खतियान नक्शा पर्चा देखकर हम क्या करेंगे? रामकिशुन बाबू के जमाने में
रामकिशुन बाबू का जमाना रामकिशुन बाबू के साथ चला गया।
छोटन बाबू का टंडेल बोल्टियार मटरा भी बोलता है।
ये कांग्रेस ऑफिस है, बाबा जी का मठ नहीं।
बालदेव जी की अकिल गुम हो रही है। खैनी से सड़े हुए दांतों को निकालकर मटरा हंसता है, फिर मटकी मारकर कहता है,
कबीराहा में तो सब धन साहेब का ही होता है, खंजड़ी बजाना सीखे हैं या नहीं?
सभी ठटाकर हंस पड़ते हैं। चंदन पट्टी का गुदरू कहता है,
बालदेव अब अपने गांव में आओगे तो जतियारी भोज से पकड़कर उठा दिए जाओगे। बालदेव मेरी गंज का एकांत मजा छोड़कर गांव क्यों जाएगा? अंधों में काना बनकर मौज कर रहा है।
बालदेव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यदि दोरिक शर्मा नहीं आ जाते तो वो फूट कर रो पड़ता। शर्मा ने आते ही कहा,
क्या है क्या है बालदेव?
क्या है क्या है
बालदेव जी को तुम लोग क्यों चिढ़ाते हो?
चिढ़ाते कहाँ हैं, हम लोग सत्संग करते हैं।
छोटन बाबू हंसकर बोले। शर्मा ने पास के खाली कुर्सी पर बालदेव जी को बैठाते हुए कहा,
बालदेव जी यहाँ बैठिए, हम जवाब देते हैं।
सत्संग की बात कहते हैं छोटन जी, ये बालदेव, दोरिक शर्मा, नेवालाल, फगुआ, सहदेवा, बौंदास, उजाड़ चुन्नीदास, पिर्थी, जगरनथिया, छेदी, गंगाराम वगैरह के सत्संग का ही फल है कि आपके जैसे लाल पैदा हुए हैं। अभी चेभर लेट गाड़ी पर लीडरी सीख रहे हैं आप क्या जानिएगा कि सात सात दिनों तक भूजा फाँक कर 100-100 माइल पैदल चलकर गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया। मोमेंट में आपने अपने स्कूल में पंचम जारज का फोटो तोड़ दिया, हेडमास्टर को ऑफिस में ताला लगाकर कैद कर दिया, बस आज आप लीडर हो गए। ये भेद हम लोगों को मालूम रहता तो हम लोग भी खाली फोटो तोड़ते। गांव के जमींदार से लेकर थाना के चौकीदार दफादार जिनके बैरी, कहीं कहीं गांव वाले दल बांध कर हमें हड़काते थे, जैसे मुड़वलिया को लोग सूप और खपरी बजाकर हड़काते हैं। आप नहीं जानिएगा छोटन बाबू, आपका जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय आपके बाबूजी दारू की दुकानों की ठेकेदारी करते थे, हम लोग उनकी गाली सुन चुके हैं। क्या बालदेव, याद है वही कटफर भट्टी की बात? गुदर तुरंत रंग बदलना जानता है, वो भी तो नमक कानून के समय से ही झोला टांग रहा है।
शर्मा जी गिद्धवास हाट पर
चुप चोटा कहीं का, शर्मा जी डांटते हैं।
जिधर चांद उधर सलाम,
बालदेव जी को सभी मिलकर चिढ़ाता था, क्यों रे?
बालदेव जी जरा साफ कपड़ा पहनने लगे हैं, एरवदा चक्र खरीदे हैं, चेहरा मोहरा पहले से जरा चिकना लगता है, पास में पैसा है इसीलिए तुम लोगों का कलेजा जल रहा है।
चलिए बालदेव जी, गांगुली जी के यहाँ हम भी बहुत दिनों से नहीं गए हैं, अभी मीटिंग जो है। बालदेव जी कहते हैं,
अरे आप भी तो बालदेव जी सब दिन एक ही समान रह गए, मीटिंग में रहकर क्या कीजिएगा? फारबिसगंज वालों का कजिया फैसला होने वाला है। कुशम बाबू एक घोड़ा गाड़ी में भर कर कागज पत्तर, फाइल रजिस्टर, भौचर, डिप्लुकट और मुकदमे के कागज ले आए हैं। उधर फगुनी सिंह भी 100 आदमी को भंजा कर ले आए हैं। आज रात भर खूब घमाघम होगा। चलिए क्या देखिएगा, रानी बेट खौकी का झगड़ा। बालदेव जी दोरिक शर्मा के साथ चले गए तो गुदर ने आंख टीप कर फिसफिसा के कहा,
अरे गांगुली जी के यहाँ जाता है, थोड़ो जा रहा है तिरपित भंडार में। अभी बालदेव जी को चोट पर चढ़ाएगा, रसगुल्ला झाड़ेगा।
छोटन बाबू कहते हैं,
अमीन बाबू से कहना होगा, मेरे गंज में अब बालदेव से काम नहीं चलेगा। चरखा सेंटर को चौपट कर दिया, घर घर में सोशलिस्ट घर घर आने लगे। अभी तो सब डकैती केस में अरेस्ट हैं। उस गांव का डॉक्टर कम्युनिस्ट था, वो भी अरेस्ट है। उसको तो हम ही ने अरेस्ट कराया है, कटहा का नया दारोगा, हमारा क्लास फ्रेंड है।
लीजिए, एक बरम ज्ञानी गए तो दूसरे कंठ पिंगली जी आ गए। ये तो आजकल और भी काबिल हो गया है। बावनदास जी आ रहे हैं। आश्रम के बूढ़े कुत्ते बिलखेपी ने बावनदास को दूर से ही पहचान लिया। अशोक गाछ के नीचे वो इसी तरह लेटा रहता है और हर आने जाने वाले को देखता है। बावनदास को देख के कान खड़ा कर गर्दन उठाकर देखता है, दुम्बी हिला रहा है। ससांग जी ने इस कुत्ते का नाम रखा था ब्लैक प्रिंस। सोशलिस्ट पार्टी के चिंगारी जी ने लाल पताका में जिला के एक मारवाड़ी को ब्लैक प्रिंस लिखा था, अर्थात जो ब्लैक करने में मशहूर हो। क्योंकि मारवाड़ी एकदम नौजवान था इसीलिए प्रिंस लिखा था। मारवाड़ी ने मुकदमा ठोंक दिया था कि लाल पताका के संपादक ने उसे कुत्ता कहा है। बिलकेपी ने ठीक पहचाना है। बावनदास जी भी अशोक की छाया में बिलकेपी के पास आकर बैठ गए हैं। आहा, प्यार का भूखा बिलकेपी खुशी से उछल कूद कर दौड़कर कभी बावनदास जी की झोली दांत से पकड़कर खींचता है, कभी लाठी लेकर भागता है।
बिलकेपी रे, बाल झड़ रहे हैं। पहले तो रविवार को निर्जला अनशन करते थे, तुम दूध हलवा भी नहीं सूंघते थे। सुनते हैं आजकल मुर्गी की हड्डी चबाते हो। तुम्हारा क्या कसूर भैया, घाव भी हो गया है। बदमाशी मत करो, झोली में क्या है जो देंगे, जाओ झोली में कुछ नहीं है।
बिलकेपी धरती पर चित्त होकर लेटा हुआ काऊं काऊं कर रहा है और बावनदास की झोली को दांत से खींचता है। बावनदास जी धीरे से एक कागज की पुड़िया निकालते हैं। बिलकेपी और भी जोर से काऊं काऊं करने लगता है, उसकी यही आदत है। बावनदास जब आता है उसके लिए एक आने का मंडा खरीदता आता है। बावनदास एक टुकड़ा मंडा उसे देता है। बिलकेपी चट से खाकर मुंह देखता है बावनदास का।
अब क्या लेगा, अंडा?
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।